ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति सर्वश्रेष्ठ पंथा है, बार बार बताना पड़ेगा। सामान्यतः यदि हम एक ही बात बार बार बोलते हैं तो हम ऊब जाते हैं। भक्ति के बारे में नहीं, कृष्ण के बारे में नहीं, तो कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ पंथ है प्रत्येक जीव के लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान श्रेष्ठ है। नथः परतराम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कृष्ण भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर और समान कोई और कुछ नहीं है, और जीव का शाश्वत धर्म है श्री कृष्ण की सेवा में। इसलिए सब शुभ कर्म की श्रेष्ठता कृष्ण, यदि वो कृष्ण भक्ति में संयुक्त है, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 28-29। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परं ज्ञानम, वासुदेव परं तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। वासुदेव मतलब कृष्ण, वासुदेव का पुत्र, जो अजा जिनके माता पिता नहीं है, जो सबके माता पिता है। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, पिता हम अस्य जगतः, माता धाता पितामहः। मैं कृष्ण कहते हैं, मैं जगत के पिता माता धाता पितामह सब कुछ हूँ। तो श्री कृष्ण की अचिंत्यता है कि वे साधारण बुद्धि के परे है, कि जो सबके माता पिता है वासुदेव के पुत्र है। वासुदेव शब्द का एक और मुख्य अर्थ है कि वे सर्वत्र वास करते, अर्थात वे सर्वव्यापी है। तो वासुदेव परा वेद, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण है, अर्थात श्रेष्ठ स्वाध्याय है कृष्ण विषयक शास्त्र का स्वाध्याय करना। वासुदेव परामखा, मख एक विशेष प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, उन्हें मतलब कृष्ण, कृष्ण कृष्ण को प्रसन्न करना यज्ञ का वास्तविक उद्देश्य है। तो कभी कभी बड़ा यज्ञ बनाना है अनावृष्टि में, ऐसा होता है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, ऐसा यज्ञ बनाना है बारिश, जिससे बारिश होगी। परंतु यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें की प्रसन्न करना है, तो ऐसे उद्देश्य है, यदि भगवान प्रसन्न हो तो हमको बारिश भेज देंगे। योग, वासुदेव परा योगा, योग ओहि के सक्षक के लिए है। वासुदेव पराक्रिया सारे सकाम कर्म अंततः ओहि के द्वारा पुरस्कृत होते हैं। तो इसलिए सब क्रिया इनकी प्रसन्नता के लिए करने चाहिए। वासुदेव परम ज्ञानम, वे परम ज्ञान है। वासुदेव परम तपः, और सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती है। वासुदेव परो धर्मो, उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। धर्म क्या है इसके बारे में बहुत चर्चा होती है, तो ये परिभाषा है, भगवान की प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है। ये धर्म शब्द की श्रेष्ठ परिभाषा है। इसलिए भागवत में इतना ज्ञान अतुल है, नहीं? तो ऐसे बोला कि श्रीमद् भागवत लेने से आप परम धनी हो जाएंगे, आप परम ज्ञानी होंगे, और परम प्रसन्न होंगे, और परम भक्ति मिलेंगे, परम भक्त बन जाएंगे। श्रीमद् भागवत कृष्ण है, साहित्य के रूप में भगवान कृष्ण, हर एक शब्द में भगवान कृष्ण उपस्थित है, कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ खोय। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण तुल्य भागवत, अर्थात भगवत और कृष्ण अभिन्न है। कृष्ण ईश्वर धर्म भगत है, धर्म ज्ञान आदि भी सह कला अनष्ट दृशाम ऐसा पुराणा का धुनोदित। तो भगवान कृष्ण द्वारप युग का अंतिम भाग में वापस गए गोलोक धाम, इस धरती को पवित्र करके चले गए वापस। तो वे धर्म और ज्ञान की मूर्ति है। तो कलि युग में जिसमें सब लोग अंधा जैसे हैं, तो कैसे लोग धर्म और ज्ञान का आलोक मिलेंगे कलि युग में? श्रीमद् भागवत से, क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण से अभिन्न है। जैसे कृष्ण श्रीमद् भागवत विभु है, अर्थात सर्वशक्तिमान, महान और सर्वाश्रय, सबको शरण दे सकते। प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक अक्षर में बहुत बहुत गहरा अर्थ है। तो ऐसे वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति ही। तो अंत में सिद्धांत है कि वे ही वासुदेव ही जीवन के परम लक्ष्य है। और द्वितीय स्कंद में भी एक ही वचन है, नारायण परावेद देव नारायण गज, नारायण परालोक नारायण परामखा, नारायण परो योगो नारायण परं तपः, नारायण परं ज्ञानम नारायण परागति। सारे वैदिक ग्रंथ परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं की निमित्त है। देवता भी भगवान के शरीर के अंगों के रूप में उन्हीं के सेवा के लिए है। विभिन्न लोक भी भगवान के निमित्त है, और विभिन्न यज्ञ उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। तो ऐसे कृष्ण सभी परिप्रेक्ष्य से कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ क्रिया है। तो परम दान है कृष्ण भक्ति। दान क्या है? कुछ द्रव्यों दूसरों को देना, जिन जो एक व्यक्ति के पास है तो दूसरों को देते हैं। वो दूसरा व्यक्ति वो चीज़ जो दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है और जिससे वो दूसरा व्यक्ति जो दान प्राप्त करते हैं जिससे वो व्यक्ति का कल्याण होगा उसको दान बोलते हैं। मेरे पास कुछ चीज़ है जो आपको देता हूँ जिससे आपका फायदा होगा। तो परम दान है कृष्ण भक्ति, क्योंकि परम कल्याण होते कृष्ण भक्ति से। तो स्पष्ट है परम दान क्या है। वो वस्तु या विषय जिससे प्रापक का परम कल्याण होगा। तो क्या है परम दान? पैसा, अन्न, अन्नदान, विद्यादान। विद्यादान तो बहुत बड़ा दान है, वास्तविक विद्यादान। ऐसे MSc, PhD वो तो मायक विद्या है। तो वो विद्या जिससे एक अज्ञानी व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा, परंतु समझना चाहिए कि वो वास्तविक ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तो दो तीन शब्द में ही हम बोल सकते हैं। जीव स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और कृष्ण कौन है? परमेश्वर पुरुषोत्तम। और क्यों उससे हमारा उपकार होते? क्योंकि कृष्ण भूलि से जीवन आदि बाह्य मोक्ष अथैव माया थारे देह संसार दुख। कृष्ण को भूल के हम इस भौतिक संसार में मायिक दुख सदैव अनुभव करते। तो आमी नित्य कृष्ण दास एक कथा भूले मायार नफा होया चिरदिन भूले। चूंकि मैं नहीं जानता हूँ, भूलता हूँ कि मैं कृष्ण का दास हूँ, सेवक हूँ, इसलिए मैं इस भौतिक संसार में सदैव भ्रमण करता हूँ। कभी कभी स्वर्ग जाता हूँ, कभी कभी नरक, कभी कभी देव शरीर मिलता हूँ, कभी कभी असुर का शरीर मिलता हूँ, कभी कभी कीट कृमि का रूप मिलता हूँ। तो ऐसे परम ज्ञान है वो ज्ञान कि मैं कृष्ण का दास हूँ और इनकी सेवा कैसे? कृष्ण सेवा करना है। तो भक्ति दान और विद्या दान तो प्राय एक ही है। यदि हम समझते कि परम विद्या है कृष्ण भक्ति, तो परम दान है उस विद्या जिससे हम समझ सकते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ। तो इस प्रकार परम क्या है? दान, अन्नदान, गरीबों को कपड़ा देना, परंतु उस प्रकार का दान से वो आशा तो अस्थाई होगी। बुगी लोग को खिलाने से फायदा होगा, लेकिन चार पांच घंटे के बाद तो फिर भूखी होंगे। तो बीमार लोग को हॉस्पिटल, उनके लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था करने से उनको पूरा काल में, चिरकाल में रोग से बचाना संभव नहीं है, क्योंकि इस भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं, स्वाभाविक है। इस भौतिक स्थिति जो अस्वाभाविक है, जीव के लिए अस्वाभाविक है, इस भौतिक संसार में स्वाभाविक है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखों भोगना पड़ेगा। तो परम दान है वो विद्या जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होंगे, और वो विद्या क्या है? कृष्ण भक्ति। तो परम कल्याण है कृष्ण भक्ति, परम शुभ है कृष्ण भक्ति, परम उपकार है कृष्ण भक्ति, परम, इसलिए परम पुण्य भी कृष्ण। पुण्य क्या है? हम ऐसे कार्य करते हैं जिससे भविष्य में हमारा कल्याण होगा, ऐसे पुण्य कर्म करना है ऐसे में। तो ऐसे ऐसे कर्म करने से भविष्य में हम फल मिलूंगा जो अनुकूल होगा। मैं गरीबों को खिलाता हूँ, हॉस्पिटल बनाता हूँ, देव देवियों की पूजा करता हूँ, और ये सब करने से आशा है कि अगला जन्म शुभ होगा, स्वर्ग जाऊंगा, और स्वर्ग से वापस आके मैं अनुकूल स्थिति में जन्म लूंगा। तो ऐसे ही पुण्य कर्म है। तो परम पुण्य है वो कर्म जिससे हमारा परम श्रेय होगा। तो स्वर्ग जाने से कुछ मायिक कल्याण होते हैं, और स्वर्ग में सुख, इस धरती पर जो सुख हम मिलते हैं वो उससे बहुत ज़्यादा है। तो फिर भी वो सुख तो दुख मिश्रित है। तो परम आनंद है कृष्ण भक्ति में, जिसमें दुख नहीं है, जिसका अंत नहीं होते हैं, जो असीम अपार है। तो इसलिए परम पुण्य है वो कार्य जिससे हमारा परम श्रेय होते, शाश्वत और पूर्ण आनंद प्राप्ति। तो इस प्रकार परम पुण्य है कृष्ण भक्ति, और परम श्रेय है कृष्ण भक्ति। और परम दो शब्द है, प्रेय श्रेय। प्रेय का मतलब ऐसे करना जिससे हम अभी अभी लाभ मिलेंगे, और श्रेय है ऐसे करना जिससे भविष्य में हमारा लाभ और ज़्यादा होगा, लाभ या कल्याण। जैसे बच्चे चाहते हैं तो खेलना, स्कूल नहीं जाना, उसको प्रेय बोलते, उससे वो भी सुखी होंगे। लेकिन भविष्य में अशिक्षित होने के कारण उसका भविष्य तो शुभ नहीं होगा। तो माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते, तो बच्चे तो नहीं अच्छा नहीं लगते, लेकिन जिससे उनका भविष्य में भी योग्यता मिलेंगे, तो इंजीनियर होना, प्रोफेसर होना, डॉक्टर होना, ऐसे जिससे भविष्य में उनका फायदा होगा, इसलिए माता पिता बच्चे को स्कूल भेजते। तो अभी वो सुख जो हम मिल सकते उसको प्रेयर बोलते, और अभी कुछ हम कुछ करते हैं जिससे हम अभी अच्छा नहीं लगते, लेकिन हम जानते हैं कि भविष्य में ऐसे करने से भविष्य में हम सुखी होंगे, उसको श्रेय बोलते। तो परम प्रेयर है कृष्ण भक्ति, परम प्रेयस परम श्रेयस दोनों, क्योंकि भक्ति में प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तव्यं, भक्ति करने में सुख होते। ऐसा नहीं है कि हम बहुत कठिन तपस्या करते हैं और बाद में हम तपस्या करने से हम फल मिलेंगे जिससे हम सुखी होंगे, ऐसा नहीं है। वर्तमान स्थिति में अभी करने का समय हम भक्ति से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनकी सेवा करने से हम सुख मिलते, और भक्ति करने से हमारा भविष्य के लिए भी हम सुखी होंगे। तो परम श्रेयस प्रेयस दोनों कृष्ण भक्ति में है। तो परम तपस्या भी कृष्ण भक्ति, तपस्या का मतलब बहुत कुछ जो बहुत कठिन है तो फिर भी हम करते हैं, किस लिए तो कर्मी लोग तपस्या करते हैं जिससे वे भुक्ति मिलेगी, भुक्ति का मतलब भौतिक इंद्रिय सुख, और ज्ञानियों तपस्या करते हैं जिससे वे मोक्ष मिलेंगे, और योग्यांग तपस्या करते हैं जिससे वे सिद्धि मिलेंगे। परंतु भक्ति में तपस्या इतना ज्यादा नहीं है, कुछ तपस्या होने चाहिए। तपस्या कृष्ण भक्ति में तपस्या ऐसे नहीं है कि शरीर को कष्ट देना कुछ तपस्या होते हैं, एकादशी पर उपवास, जन्माष्टमी पर उपवास, सुबह सुबह उठना, परंतु कृष्ण भक्ति का स्वभाव आनंदमय, और भक्तों जो तपस्या जो करते हैं तो उसमें दुख नहीं मिलते, उसमें सुख भी मिलते, क्योंकि कृष्णार्थ ही किल चेष्टा, सब कुछ करते श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और वो थोड़ी सी तपस्या जो भक्तन करते हैं तो करते श्री कृष्ण की प्रीति से, और समझते कि ऐसा करता हूँ जिससे भगवान प्रसन्न होंगे, और कि भगवान मुझसे प्रसन्न होंगे इस छोटी छोटी सी तपस्या करने से, तो उससे भक्तों और भी आनंदित होते। तो भक्ति में वास्तव में तपस्या नहीं होती, त्याग वैराग्य वो भी है कृष्ण भक्ति में त्याग, परंतु भक्ति में त्याग क्या है, वो सब अनर्थ का त्याग, जो हमारा वास्तव कल्याण के विरोध उसको त्याग करना। जैसे यदि हम एक व्यक्ति को उपाय देते हैं जैसे वो सिगरेट पीना चढ़ते हैं, वो सिगरेट त्याग, लेकिन वो त्याग उसके लिए अनुकूल है, तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति में त्याग जो है वो पूरा आत्म कल्याण के लिए है। त्याग क्या है? जो मांस मछली अंडे खाने वाले है तो हम बोलते हैं वो सब छोड़ दो, और भारत में आज तक बहुत शाकाहारी है परंतु ज़्यादातर प्याज लहसुन खाते, तो वो भी त्याग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्तों का संकल्प है कि हम केवल वो भोजन लेंगे जो कृष्ण प्रसाद है, तो पहले भोजन बनाना है और भगवान कृष्ण को चढ़ाना है। और हम कृष्ण को क्या अर्पण करते हैं? जो भगवान कृष्ण का पसंद है, और कृष्ण का पसंद नहीं है प्याज लहसुन, इसलिए हम नहीं लेते। अलग अलग कारण भी है, वो सब तामसिक, प्याज लहसुन तामसिक है और उसके खाने से तो तामगुण मन में ज़्यादा आते हैं। तो मांस मछली अंडे प्याज लहसुन वो सब त्याग करना चाहिए, लेकिन वो बड़ा त्याग नहीं है। और उससे शारीरिक मानसिक और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कल्याण होता है। तो उस प्रकार त्याग से क्या नुकसान है? कुछ नहीं है, पूरा लाभ होता है। सिगरेट पीना वो भी त्याग करो। तो कृष्ण भक्ति में त्याग जो है वो ऐसे कठिन कठोर त्याग ऐसे नहीं है। भूल धारणा वो सब भी त्याग करना, शायद वो कठिन है बहुत लोग के लिए, तो कि सब देवता एक ही है, भगवान का कोई रूप नहीं है, आधुनिक युग में मुख्य भगवान है साईं बाबा, ये सब भूल धारणा त्याग करना चाहिए। मन में गंदगी सब त्याग करो, काम क्रोध लोभ मोह मादा मत्सर्य वो सब त्याग करो, छोड़ दो। भौतिक आसक्तियों से अनासक्त हो जाओ। तो कृष्ण भक्ति में त्याग आसान होते हैं, क्योंकि वो त्याग तो स्वाभाविक है, क्योंकि जीव का स्वभाव है कृष्ण की सेवा करना। और सिगरेट पीना, मांस खाना, अंडे खाना, टीवी देखना, वो सब जीव का स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव है कृष्ण सेवा करना। तो त्याग और वैराग्य दो शब्द तो प्राय एक ही तत्पर्याय है, एक ही पर्याय है। तो कृष्ण भक्ति में वैराग्य है किसी वस्तु से आसक्त नहीं होना, परंतु समझना कि सब वस्तु कृष्ण की सृष्टि है और सब कुछ कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना। अनासक्त से विषयान यथाहम उपयंजतः निबंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो सब कुछ जो जगत में है तो श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। ये परम त्याग है, परम वैराग्य है कृष्ण भक्ति में। जैसे श्रील प्रभुपाद स्वयं ये उदाहरण दिया है, ये एक माइक्रोफोन है, तो जिसने वो कंपनी जो इसको बनाया तो कृष्ण भक्ति के लिए नहीं बनाया, तो क्या वो भौतिक संगीत के लिए और भौतिक शिक्षा देने के लिए और भौतिक स्पीच देने के लिए तो हम वो इसका बनाना का उद्देश्य पूरा भौतिक था, परंतु ये सब पदार्थों जिससे बनाया है वो सब कृष्ण की सृष्टि है। और भगवान और जिस जिन्होंने इस चीज को बनाया, तो भगवान को, भगवान वो व्यक्ति को बुद्धि प्रदान किए जिससे वो ऐसा चीज बना सकते। तो वो ये सब लेके हम कृष्ण की सेवा में प्रयोग करते। तो हम ऐसे बोल सकते कि नहीं नहीं, हम विरक्त थे, हम केवल ऐसे वस्तुओं को प्रयोग करेंगे जिसका साक्षात संबंध है कृष्ण भक्ति में, जैसे पुस्तक, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, घंटी तो पूजा में प्रयोग करना है, अगरबत्ती, ये सब कृष्ण भक्ति के लिए, ये तो पूरा भौतिक है। परंतु परम वैराग्य ऐसे ही विचार करना नहीं, परम वैराग्य है कि तो इंद्रिय सुख जिसका कारण से इस चीज बनाया हुआ इंद्रिय सुख के लिए, उसके लिए मैं प्रयोग नहीं करूँगा, प्रयोग करूँगा कृष्ण भक्ति में, जैसे मैं इसमें से आपको बताता हूँ अभी। तो इसको युक्त वैराग्य कहते कि हम सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। तो कुछ चीज है जो पूरा बंद करना चाहिए, कृष्ण सेवा में लगाना संभव नहीं है, जैसे कसाई खाना। हम नहीं कहेंगे कि हम हरे कृष्ण बोल के पशु हत्या करेंगे, नहीं, ऐसा चीज तो पूरा बंद करना। ऐसे कसाई खाना, शराब दुकान, उस कृष्ण सेवा में शराब पीने का कोई प्रयोग नहीं है। ऐसा है पाश्चात्य देशों में कुछ मकान है जो पहले पब था, पब मालूम है, पब बंगलोर बम्बई में और सब लोग जानते हैं इस शब्द का, शराब खाना, जिसमें वो सब नीच लोग जाते हैं शराब पीने के लिए। नीच लोग का मतलब पाश्चात्य देश में सब लोग, क्योंकि वो पाश्चात्य संस्कृति में शराब पीना एक मूल स्तंभ है। तो ऐसे ही कुछ मकान है जो पब था, तो उसको हम इस्कॉन खरीद करके हम संस्कार किया और अभी भगवान कृष्ण का मंदिर है। परम वैराग्य है कृष्ण भक्ति, युक्त वैराग्य। तो ऐसे ही परम विचार, विमर्श, विवेक कृष्ण भक्ति है। यदि हम विचार करते तो क्या है जीवन का उद्देश्य, मुझे क्या करना चाहिए, तो परम विचार है कि मुझे कृष्ण सेवा करनी चाहिए। तो परम विचार विमर्श कृष्ण भक्ति है, परम साधना कृष्ण भक्ति है। साधना क्या है? एक आध्यात्मिक या धार्मिक उपाय जिससे साध्य मिलते है। साधना है उपाय और साध्य है लक्ष्य। तो इस प्रकार योग साधना भी है और ध्यान, तपस्या, ये अलग अलग साधना है, तंत्रिक साधना भी है। तो परम साधना क्या है इसको समझने के लिए तो पहले हमें समझना चाहिए तो परम साध्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है। तो परम लक्ष्य है कृष्ण, तो परम साधना है वो साधना जिससे कृष्ण को प्राप्त होते। कृष्ण प्राप्ति कैसे होते, कृष्ण भक्ति से। तो कृष्ण भक्ति है साधना और परम साध्य। इस प्रकार भी कृष्ण भक्ति परम साधना और परम साध्य, क्योंकि कृष्ण भक्ति में साधना और साध्य एक ही है। हम भक्ति करते हैं किस हेतु से, जिससे हम पूरा शुद्ध रूप में भक्ति कर सकेंगे। इस भौतिक स्थिति में हम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इस प्रकार पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये सब हम करते हैं, ये सब कृष्ण भक्ति है। और ये सब करने से क्या प्राप्य है, शुद्ध पूरा शुद्ध अवस्था में शुद्ध भक्ति करना। शुद्ध भक्ति में क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। साधना और साध्य एक ही है। तो कर्म की साधना में लोग पुण्य काम करते हैं और जैसे यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, देव देवियों की पूजा करते हैं और फल जैसे स्वर्गवास प्राप्त करके तो उपाय को चढ़ते साधना चढ़ते। अभी जिसलिए वो कर्म पुण्य कर्म किया था उसका फल मिला था, इसलिए वो साधना करने का और आवश्यकता नहीं है। परंतु भक्ति में साधना भक्ति और साध्य भक्ति दोनों एक ही है। और ज्ञान मार्ग में ऐसे विवेक करना, नीति यही सत्य नहीं है, यही सत्य नहीं, वो सत्य नहीं, वो सत्य नहीं। तो ऐसे विवेक करना, ये भौतिक संसार में सब कुछ माया है और ऐसे विवेचना करना और सिद्धि प्राप्त करके वो सब विचार विमर्श चढ़ते और लीन होते ब्रह्म ज्योति में। और योग में साधन है, योग साधना आसन क्या है, यम नियम आसना प्राणायाम धारण ध्यान प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान साधन क्या यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि अष्टांग योग में 8 स्तर है और 8 प्रकार की क्रिया है। तो समाधि सिद्धि है योग में और समाधित होने से योग सिद्धि मिलते। तो योग सिद्धि प्राप्त करके और यम नियम इत्यादि करने का आवश्यकता नहीं है। परंतु भक्ति में साधना और साध्य एक ही है। तो इस प्रकार परम साधना है कृष्ण भक्ति, परम साध्य है कृष्ण भक्ति, परम समाधि है कृष्ण भक्ति। समाधि शब्द प्रचलित है, समाधि का मतलब योग और ध्यान में सिद्धि समाधि। समाधि का अर्थ है तो जिसमें चेतना पूरा शुद्ध है और पूरा एकाग्रत है परम सत्य पर, तो वो कृष्ण भक्ति में आसानी से कृष्ण भक्ति से समाधि मिलती है। तो कैसे? तो मन कृष्ण भक्ति में, मन तो पूरा कृष्ण कृष्णमय तन्मय रहते। भक्ति में प्रथम साधना है सवाई मन कृष्ण पदारविंद यो हो। कृष्ण भक्ति में प्रथम क्रिया है मन को कृष्ण में अर्पण करना, कृष्ण में नियुक्त होना। तो कृष्ण भक्ति में प्रथम साधना और परम सिद्धि तो एक ही है। तो प्रथम स्तर में वो भक्ति जो मन में कृष्ण का स्मरण करना अपक्का है, और सिद्धि में पक्का होते हैं। तो साधना वस्त्र में भक्ति और सिद्धि में दोनों एक ही है। जैसे वैकुंठ में लोग क्या कहते हैं, तो ऐसे भगवान की आरती करते हैं, कृष्ण प्रसाद लेते हैं, संकीर्तन करते हैं। तो हम जो यहाँ करते हैं वहाँ भी करने हैं। तो अंतर है कि यहाँ हम साधना अवस्था में करते हैं अपक्का अवस्था में, और वहाँ पक्का। पक्का होने के कारण, पक्का होने के बाद भक्तों योग्य है वैकुंठ जाने के लिए, और वहाँ भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार परम समाधि, परम साध्य भक्ति है, परम साक्षात्कार। ये साक्षात्कार शब्द हम भी सुनते हैं। साक्षात्कार क्या है? आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार जिसलिए ज्ञानी योग्यं बहुत बहुत प्रयत्न करते हैं। भक्तों तो भक्ति का प्रवेश करने समय मिलते, वो साक्षात्कार जो बहुत कठिन है ज्ञानी और योग्यों के लिए, तो भक्ति का प्रवेश है वो आत्म साक्षात्कार क्या है। तो खाली यही बात समझना कि मैं सनातन जीव हूँ, मैं परमेश्वर पुरुषोत्तम कृष्ण का सनातन दास हूँ। तो खाली यही बात समझना और स्वीकार करना आत्म साक्षात्कार है। आत्म साक्षात्कार बहुत बहुत सहज है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं है। कठिनाई है यदि मन में वो अहंकार है, नहीं 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 मैं स्वयं खुद का बल से मैं आत्म साक्षात्कार मिलूंगा। वो अहंकार से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना बहुत कठिन है, क्योंकि शुरुआत से वो भाव है कि मैं स्वतंत्र हूँ, तो मैं स्वयं सब कुछ करूँगा। और भक्ति में स्वभाव क्या है या भावना क्या है, तो स्वीकार करना कि मैं जीव हूँ, कृष्ण भगवान है, मैं उनकी कृपा पर पूरी निर्भर करता हूँ। तो ऐसे कृष्ण भक्ति परम साक्षात्कार है। और वास्तव में साक्षात्कार शब्द का मतलब है कृष्ण भक्ति। अच्छा, ये सब शब्द पुण्य शब्द का पूर्ण अर्थ है भक्ति। शुभ लाभ ये सब शब्द की पूरी परिभाषा है कृष्ण भक्ति। लाभ कृष्ण भक्ति के बिना लाभ का मतलब क्या है? कुछ लाभ तो मायक है। ओ अभी मैं क्रोध पाती हूँ, Maya ke, tumhara paas to nahi hai. O kali maya se, tum sochte ki tum kropati ho. Aajkal kropati hone to bari baat nahi hai. Ek flat ka dam hote 50 lakh aise. To kro itni bari. Bori hai, lekin jaise pahle aisa nahi. To aise, param swadhyay kya hai? Krishna bhakti. Swadhyay kehne se, bahut sare shastron ka swadhyay kehne se, yadi hum avagat nahi hai ki Krishna bhagwan hai, aur main Krishna ka das hu, to wo sab shastra swadhyay se, हम क्या मिला कुछ नहीं स्वाध्याय से हम और भी माया से मोहित हो सकते यदि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति वाणी शुद्ध भक्तों से नहीं मिलते तो स्वाध्याय से हम और ज्यादा मोहित बन जाएंगे यदि हम गीता पाठ करते हैं और उसके ऊपर बड़ा पंडित माया अपहृत ज्ञानी लिखते हैं कि सब भगवान है तुम भी भगवान हो तो ऐसा स्वाध्याय से कल्याण नहीं होगा नुकसान क्षति होगी तो स्वाध्याय करने के पहले तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए हे भगवान मुझको ऐसा रास्ता दिखाए जिससे मेरा वास्तविक कल्याण होगा नहीं तो तो जितने भी हम त्याग तपस्या वैराग्य पुण्य कर्म कर्म ज्ञान योग ध्यान इत्यादि करते हैं तो हम पथ से विभ्रमित रहेंगे तो पहले ठीक करना चाहिए तो कौन सा रास्ता सही है नहीं तो सब कुछ जो हम करेंगे तो सब अशुभ होगा तो समझना चाहिए वास्तविक कल्याण क्या है परम कल्याण क्या है केवल कृष्ण भक्ति में तो ऐसे रिद्धि सिद्धि विधि बहुत विधि पालन करने से कुछ नहीं होते वास्तविक कल्याण नहीं होते यदि वो सब विधि का लक्ष्य कृष्ण भक्ति नहीं है तो सब मंत्र कहने से बहुत मंत्र है नहीं मृत्युंजय मंत्र तो वास्तविक मृत्युंजय मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तो केवल उससे केवल मृत्यु को जीत नहीं है तो उससे और बहुत भी अधिक फल प्राप्त होते कृष्ण नाम महामंत्र ऐ तो स्वभाव जय जापे तार कृष्ण उपजाय भाव जो हरे कृष्ण जापते हैं तो भाव कृष्ण भाव में मिलते आध्यात्मिक प्रेममय भाव तो कृष्ण के भक्तों तो मुक्ति प्राप्ति के बारे में चर्चा नहीं करते ओ हम कीर्तन करेंगे उससे हम मुक्त होंगे भक्तों तो ऐसी बात नहीं बोलते तो हम कीर्तन करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कीर्तन है शब्द रूप में कृष्ण कीर्तन शुद्ध भक्तों का कीर्तन Krishna, pura Krishna prema maya. So is prakar samajha. Mantra shastra mein bahut mantra hai. Maha mantra hai. Hare Krishna, Hare Krishna. Jaise Chaitanya Bhagavat mein Chaitanya Mahaprabhu ne kaha, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhu kahe, kahilam, e maha mantra, iha japa gya sabhe kare nirbandha, iha hoite sarva siddhi hoibe sabha, sarva khan kahana, vidhi nahiya. Chaitanya Mahaprabhu ne kaha ki, jo abhi bala wo maha mantra hai. Or sab nirvishesh, yuvak, vrid, shikshit, murk, stri, purush, sab is mantra kaho. Parantu kuch bhakti vidhi bhi palan karna chahiye. Isse sab log sarva siddhi, param siddhi, prem siddhi mil sakte. Isliye sadaiva Krishna kirtan, Hare Krishna Mahamantra, japo kirtan karne ke alava koi dusri vidhi nahi hai. Ye param vidhi hai. Param vidhi hai Krishna bhakti Mahamantra jap kirtan karna. To param riti, param niti. Riti ka matlab upai, param upai or upaya, jaise sadhana or siddhi, sadhana sadhya, to why say upai, upaya, to param riti, hey Krishna bhakti, param niti, hey Krishna bhakti. Niti ka matlab to kaise vyavaha karna is sangsame, just say, hamara kalyan hoga. To param niti hai Krishna bhakti. Or kaise hum Krishna bhakti karne se is bhotik sangsame vyavaha karne chahiye. To usliye hum sab purv acharyong ke charitra se shiksha milti hai. So yadi hum chahte hai samajna, to kaise is bhautik sansar mein bhakti jivan vyatit karna hai. To Srila Prabhupada ka jivan charitra se hum samaj sakte. Srila Prabhupada or Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Bhaktivinoda Thakur, or aaj bhi kisi pakka bhakt ka charitra or vyavaha se hum samaj sakte. To kaise hum is sansar mein reh sakte, just say hum din par din bhakti mein pragat ho sakte. To I say param niti hai Krishna bhakti mein, or hum Srimad Bhagavat ka pratham skand or dvitiya skand se dono se Vasudeva Paraveda, Narayana Paraveda, ye sab upadesh mila, or yagya ka udesha hai Krishna ko prasan karna, Vasudeva Paramakaha, Vasudeva Param Gyanam, or ye sab talika ka antim ya charam upadesha ki param gati hai Vasudeva ya Narayana. So I say param gati hai Krishna bhakti, param laksha hai Krishna bhakti. So I say tirtha yatra karne se Krishna bhakti prapt hone chahi. So punya arjan karne ke liye, bhautik punya arjan karne ke liye nahi. Vastav mein tirth yatra karna ki avashyakta nahi hai, kyunki aajkal tirth sab tirth to सब तो नहीं है लेकिन ऐसे सब बहुत तीर्थ में तो पंडित पंडा का मुख्य उद्देश्य है तो यात्रियों का पैसा निकालना, तो सब वातावरण तो व्यापार जैसे है। तो इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मने भ्रम सर्व सिद्धि गोविंद चरण। तो यदि मन स्थिर है स्थित है गोविंद के चरण में तो कोई दूसरा तीर्थ यात्रा करने का जरूरत नहीं है। फिर भी भक्तों चाहते हैं वो सब तीर्थ स्थान जाना जिसमें कृष्णा लीला राम लीला चैतन्य लीला प्रकट हुई। भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा गौरा आमार जय सब स्थाने करव भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरिब आमी प्रणय भक्त संगे। प्रेमी भक्तों की संगति में भक्तिनाथ ठाकुर कहते मैं चाहता हूँ सब तीर्थ जाने जिसमें चैतन्य महाप्रभु गए हैं। तो परम तीर्थ है कृष्ण के भक्तों। तीर्थ का मतलब ऐसे स्थान जिससे हम आसानी से इस भौतिक संसार से वो वैकुंठ जगत जा सकते, वो तीर्थ शब्द का अर्थ है। तो परम तीर्थ है कृष्ण के भक्त। भगवद्विधा भागवत तीर्थ भूत स्वयं प्रभो तीर्थानि तीर्थ कुर्वन्ति तीर्थानि स्वन्तस्तेन गतामृता। युधिष्ठिर महाराज विदुर को बताया कि विदुर तो तीर्थ यात्रा से वापस आए हैं हस्तिनापुर, और युधिष्ठिर महाराज तो विदुर को बताया कि आप जैसे महान भक्त चलंत तीर्थ हो क्योंकि आपके हृदय में कृष्ण है कृष्ण प्रकट है, तो आपका संग से आप जहां भी हो आपका संग से किसी मायाबद्ध जीव कृष्ण को मिल सकते। तो इस ऐसे आप परम तीर्थ है और आप इतना बड़ा तीर्थ है कि तीर्थ स्थान जाकर आप वो तीर्थ स्थान को पवित्र बनाते हैं। तो परम तीर्थ है कृष्ण भक्त और कृष्ण भक्ति। तो ऐसे गंगा स्नान से और भी पवित्र भक्तों और भक्ति गंगारा पराशो हैले पश्चात है बाबा पावन दर्शन पवित्र करो यही तो मार्ग हो। नरोत्तम दास ठाकुर शुद्ध वैष्णव के बारे में कहते हैं कि गंगा का स्पर्श करने से धीरे धीरे पवित्रता होती है, परंतु शुद्ध भक्तों का दर्शन करने से दर्शन मात्र पवित्रता होती है क्योंकि परम पवित्रता है कृष्ण भक्ति। तो इस प्रकार सब कुछ संपूर्ण होते हैं कृष्ण भक्ति में। तपसा तथा किम आराधितो यदि हरस तपसा तथा किम नाराधितो यदि हरस तपसा तथा किम अंतबहिर यदि हरस तपसा तथा किम नान्तबहिर यदि हरस तपसा तथा किम। नारद मुनि का सिद्धांत है कि यदि एक व्यक्ति हरि की आराधना करते हैं तो वो व्यक्ति का तपश्चर्या करने का क्या आवश्यकता, मतलब कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि किसी व्यक्ति हरि की आराधना नहीं करते तो उसकी तपश्चर्या करने से क्या फायदा होता है, कुछ नहीं। और यदि एक व्यक्ति अंदर में और बाहर भी भगवान हरि का दर्शन मिलते तो उसका तपस्या करने से कुछ फायदा नहीं, क्योंकि पहले से वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। और यदि एक व्यक्ति तपस्या करने से अंदर और बाहर हरि का दर्शन नहीं मिलते तो उसका तपस्या करने से क्या लाभ है, कुछ नहीं। तो इस प्रकार तो सभी परिप्रेक्ष्य से समझना चाहिए कि सब कुछ जो शुभ है, सब कुछ तो अति सुसंपूर्ण रूप से पूर्ण होते कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति श्रेष्ठ मार्ग है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो आशा है ये सब सुनने से आप प्रसन्न है और आपकी बुद्धि की शुद्धि हो गए। परम बुद्धि है कृष्ण भक्ति करना। अहम सर्वस्य प्रभवो मथा सर्वं प्रभवते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विताः। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ है, इनसे सब कुछ आते हैं, इसलिए भाव से इनकी भक्ति करते हैं। तो परम बुद्धि है, परम शुद्धि है कृष्ण भक्ति। परम शुद्धि तो जैसे गंगा स्नान करने से शुद्धिकरण होते समय लगते, और तपस्या करने से शुद्धिकरण देरी होते। शुद्धिकरण का मतलब समझना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, और जब तक हम स्वीकार नहीं करते हूँ कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो जितने भी हम तपस्या करते शुद्ध होने के लिए तो पूरी शुद्धि नहीं होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय प्रभुपाद। All glories to Srila Prabhupada।